मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 22 दिसंबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी के स्वागत के साथ ही साथ मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं जय पाल मीना, आप अलवर राजस्थान से हैं। देव ऋषि, आप बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं। क्वादसुल आरा बिहार से हैं। दिव्या रानी वर्मा, आप देहरादून से हैं। रवि कुमार प्रहलाद मेश्राम, आप चिरौली महाराष्ट्र से हैं। नवीन हिसार हरियाणा से हैं। और सुषमा कोथे, आप छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। तो जयपाल, देव ऋषि, क्वादशूल, दिव्या, रवि, नवीन और सुषमा, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इन नामों में हो सकता है कि 1-2 साथियों के नाम के उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो रही हो, क्योंकि पहली बार, जैसा कि मैं बता चुका हूं, चाहे व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या कोई भी शब्द हो, जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो सही उच्चारण तक पहुंचने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरे गलत उच्चारण को आप लोग बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेंगे। तो मित्रों, इस स्वागत के बाद अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना है, और यह सूचना भी आप सब उन साथियों से जुड़ी हुई है जो फरवरी की क्लासेस में अभी आना चाह रहे हैं और जिन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। मित्रों, यह सूचना फीस से जुड़ी हुई सूचना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, पहले से ही वेबसाइट पे यह दिया हुआ था कि जो फरवरी की क्लासेस हैं उनके लिए जो पूरी जो रिमेनिंग फीस है वो आप सबको 31 दिसंबर इसी साल के 31 दिसंबर तक जमा करनी है। तो यह सूचना एक बार आप लोगों को पुनः स्मरण दिलाने के लिए है कि प्लीज फरवरी बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं वे 31 दिसंबर तक अपनी फीस जमा कर दे। इसके लिए एक बात और है कि आप यह फीस AFE की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। AFEIS की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, तो आप ये फीस ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं थोड़ी सी और जो आज मेरे पास काफी कुछ सूचनाएं हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास जो हमारा ये 4th बैच फरवरी में जो शुरू होने जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स अपने मोबाइल नंबर मेरे पास भेजने लगे हैं कि उनका मोबाइल नंबर बता दिया जाए ताकि उस एरिया से आने वाले स्टूडेंट्स उनसे कांटेक्ट कर सके। डेफिनेटली हम ऐसा करते हैं और इस बारे में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सूचना ये है कि प्लीज अभी आप लोग अपना मोबाइल नंबर न भेजें। स्वाभाविक है कि आपके आने की गारंटी एकेडमी को तब मिलती है जब आपकी फीस जमा हो जाती है। पिछली बार का हम लोगों का अनुभव रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर घोषित कर दिए जाते हैं लेकिन बाद में वे स्टूडेंट नहीं आते हैं, तो इससे एक विचित्र किस्म की थोड़ी सी एक स्थिति बन जाती है। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने फैसला किया है कि जब ये पेमेंट का सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ ये स्टूडेंट एकेडमी में आ ही रहे हैं, फिर हम उनसे मोबाइल नंबर मांगने की घोषणा करेंगे। और फिर जब आप लोग अपने मोबाइल नंबर भेजेंगे तो डेफिनेटली वो मोबाइल नंबर डेली ऑडियो में शामिल करके स्टूडेंट्स को, अन्य स्टूडेंट्स को बताया जाएगा ताकि वो आप लोगों से कांटेक्ट कर सकें। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करें और फिलहाल इस बात का ध्यान रखें कि आप 31 दिसंबर तक अपनी फीस जमा कर दें। मित्रों, मेरे पास बहुत से मेल्स आए हैं और आज उनकी बहुत लंबी सूची भी है, एक दो बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूंगा, और सच पूछे तो आज के इस डेली ऑडियो को रिकॉर्ड करते हुए मुझे कुछ अतिरिक्त किस्म की खुशी भी महसूस हो रही है और बहुत अधिक आत्मसंतोष का अनुभव हो रहा है। मित्रों, इस अतिरिक्त खुशी और बहुत अधिक आत्मसंतोष का कारण क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से जब वो काम पूरा होता है या जब उसके फल आपको मिलने लगते हैं तो एक अतिरिक्त खुशी, रोमांच, आत्मसंतोष, संतोष, जो भी आप कहना चाहें, उसका भाव महसूस होता ही है और ये होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ में फिर बौर या फूल आते हैं, फिर वो फल बनते हैं, फल फिर लगातार बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद फिर एक दिन पकता है। जब वो पक जाता है तो हम उसको कहते हैं फल, यानी कि जो हम कर रहे थे उसका रिजल्ट मिल गया। मित्रों, मेरे फल के रूप में जो मैं यहां जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं और जो मेरे आत्मसंतोष का कारण है वो ये है कि आपको मालूम है कि 18 दिसंबर से मेंस के सिविल सर्विस के एग्जाम हो रहे हैं और उसके पेपर्स जो थे वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। निबंध के भी पेपर्स मेरे पास हैं, जनरल स्टडीज के जो चारों सब्जेक्ट्स थे उनके भी पेपर्स मेरे पास हैं। मैं यह देखकर दोस्तों रोमांचित हो गया और सच पूछिए तो मुझे अपनी आंखों पर और काफी कुछ अपने दिमाग पर भी ये विश्वास नहीं हुआ कि जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल स्टडीज के पेपर्स में, चारों पेपर्स में और यहां तक के निबंध में भी, वो अद्भुत तरीके से उन सारी स्थितियों से मेल खा रहे हैं जो जिनकी चर्चा हम लोगों ने डेली ऑडियो में आप लोगों के साथ की है, जिनके बारे में आप लोगों को न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं। और उससे भी आश्चर्य की बात ये कि जो क्वेश्चंस वीकली आपको लिखने के लिए दिए गए हैं, मित्रों इसके बारे में मुझे अपनी तरफ से बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं, आप क्लिपिंग्स पढ़ रहे हैं, आपके सामने आज भी वो क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट एएफई वेब आईएएस वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उन्हें देखिए और देखने के बाद फैसला कीजिए कि जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। आप मेरी बातों पर सीधे सीधे मत जाइए और जाना भी नहीं चाहिए। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बी रियलिस्टिक, ज्यादा से ज्यादा यथार्थवादी बनिए। मैच करने के लिए आपके पास आपका पूरा अतीत का अनुभव मौजूद है। मैं जो भी बातें कह रहा हूं उसके प्रमाण के तौर पर आप इसे जांच परख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जांच परख सकते हैं। उसमें अब परिवर्तन करने की मेरे पास कहीं कोई रत्ती भर भी संभावना नहीं रह गई है। और मैं समझता हूं दोस्तों कि आपको ऐसा करना भी चाहिए। यह मैं क्यों कह रहा हूं, ये दोस्त मित्रों मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, यह मैं आप लोगों के लिए ही कह रहा हूं, क्योंकि पहले भी मैं ये बात करता रहा हूं और अभी भी मैं ये बात करूंगा कि जब आपको किसी पर भरोसा होता है, या यूं कह लीजिए कि जब जिस पर हमें जितना ज्यादा भरोसा होता है उनकी बातों का प्रभाव हम पर उतना अधिक पड़ता है, या इसे और सरल शब्दों में कह ले तो ये कि चूंकि हमारा भरोसा उस पर होता है तो हम उनकी बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं तो हम ऐसा करें। मैं केवल इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं कि अगर मैं डेली ऑडियो सुनने की बात कहता हूं, न्यूज सुनने की बात करता हूं, क्लिपिंग्स पढ़ने की बात कहता हूं, क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की बात कहता हूं, और यहां तक कि जो मोटिवेशन वाला पार्ट है, मोटिवेशन वाले पार्ट को लेकर के बीच बीच में इस तरह की बातें होती हैं कि इसको बंद कर दिया जाए और इसकी जगह पर न्यूज ही की ज्यादा बातें की जाए, तो फिर हम इसको बंद नहीं कर पाते क्योंकि मैं इसकी उपयोगिता को मैं जानता हूं, जो आपके निबंध में काम आता है, जो आपके इंटरव्यू में काम आता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आता है, और सबसे बड़ी बात है एथिक्स के जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर उसमें काम आता है। और इन सब के प्रमाण के तौर पर मित्रों आपके सामने सारी चीजें मौजूद हैं, तो प्लीज आप एक बार थोड़ी सी मेहनत करें और उनको चेक करें तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं कितना सही कह रहा हूं, कितना गलत कह रहा हूं। और मित्रों ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इसके बारे में मेल आने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं इलाहाबाद के वरुण पांडे को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं, कि जैसे ही निबंध का पेपर हुआ, 12 बजे निबंध का पेपर खत्म हुआ और 1 बजे यह निबंध का पेपर मेरे व्हाट्सएप पर अवेलेबल था। हालांकि इसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स ने भी शाम तक, अगले दिन रात तक मेरे पास निबंध के पेपर भेजे हैं। लेकिन चूंकि वरुण पांडे का निबंध भेजा गया, निबंध का पेपर पहला था, तो इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा। बधाई मैं इसलिए देना चाहूंगा मित्रों कि मेरा जो एक सिद्धांत है, और खासकर जो मेरे नौजवान साथी हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो या न दे रहे हो, उनके लिए एक मैसेज भी है कि डू इट इफ यू कैन डू इट इमीडिएटली, करें, यदि आप उसे तुरंत कर सकते हैं तो तुरंत ही करें। तो डेफिनेटली वैसा वरुण पांडे ने किया, और मुझे ध्यान भी आ रहा है, उनका चेहरा भी याद आ रहा है, कई बार जब क्लास में आए थे तो उनसे बात भी हुई थी। जहां तक मेंस के पेपर्स का सवाल है, वो मुझे बाद में मिले हैं, लेकिन मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका किस तरह का संबंध डेली ऑडियो से रहा है, पेपर्स की न्यू क्लिपिंग्स से रहा है, योजना और कुरुक्षेत्र के जो आर्टिकल प्रोवाइड किए गए थे उससे रहा है, यहां तक कि स्पेशल ऑडियो जो प्रोवाइड किए गए हैं, कितने क्वेश्चंस तो सीधे सीधे स्पेशल ऑडियो के ही टॉपिक से आए हैं, यूएनओ की जहां तक बात है, क्लाइमेट चेंजेस की बात, और भी बहुत से हैं, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। हालांकि ये बात जरूर है कि जो स्पेशल ऑडियो है वो सबके लिए चूंकि नहीं है, इसीलिए जो दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने स्पेशल ऑडियो नहीं सुने हैं, जिन्हें नहीं मिला है, वो इसकी सत्यता का अंदाजा लगाने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन यह भी मित्रों सच है, अगर आप मेरी बातों पर यकीन कर सकते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ने वो सारी चीजें कलेक्ट करके मेरे पास भेजी हैं कि डेली ऑडियो से कितनी चीजें पूछी गई हैं, यहां तक कि निबंध में भी जो ऑडियो का जो मोटिवेशन सेक्शन होता है उसमें से किस तरीके से मदद मिली है, और जो क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, और इसके बाद जो उससे भी बड़ी बात कि जो 30 क्वेश्चंस अभी मैंने दिए हैं करने के लिए, जो हर सप्ताह में एक क्वेश्चंस देता हूं, और मैं आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि सॉल्व इट, इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसमें से कितने सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं, और टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा आए हैं मित्रों। इस तरह का जो कैलकुलेशन करके जो भेजा है उसमें है हमारे संदीप पांडे जो विशाखापट्टनम से हैं, उन्होंने इसके बारे में मुझे सूचित किया है। गोपाल तिवारी हैं, उन्होंने भी मुझे इसके बारे में बताया है, जो नई दिल्ली से हैं, और एक रविकांत दीक्षित हैं, उन्होंने भी मेंस की डिटेल्स लिख करके भेजी हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस उसमें से आए हैं। मुझे मालूम है कि उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी में ये सब काम किया है, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में भेजी है, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस तुरंत के जादू का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ नो डाउट कि आप खुद चेक भी करें। मित्रों ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए तो है ही है, देखिए मैं हूं इसलिए हूं क्योंकि आप हैं, मैं इसलिए डेली ऑडियो तैयार करता हूं क्योंकि आप सब सुनते हैं, और अधिक ऊर्जा से तैयार करता हूं क्योंकि आप सुनने के बाद उसे पसंद करते हैं, और डेफिनेटली जब इस तरह से परीक्षा में सीधे सीधे उससे इतनी ज्यादा मदद मिलने लगे तो मेरी ऊर्जा का स्तर तो फिर और ज्यादा बढ़ ही जाता है। और ये मैं जितनी बातें भी कह रहा हूं फ्रेंड्स, ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप हैं, आप हैं तो मैं हूं, सीधी सी बात है, इसमें मुझे कहीं रत्ती भर भी संदेह नहीं है। इसलिए मित्रों अगर आप अधिक विश्वास करके इसे आगे बढ़ाएंगे, आप विश्वास करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देंगे, तो डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगेगा कि इस नौकरी को छोड़ने के बाद जिस काम को मैंने अपने हाथ में लिया है वो काम कहीं ना कहीं सही है, सार्थक भी है। तो मित्रों इतनी कोशिश थोड़ी सी आप करें। फ्रेंड्स एक मेरे पास मेल है जिसमें सपना है बीकानेर से, उन्होंने लिखा है कि शुक्रवार को तो ऑफिस खुले रहते हैं, अखबार भी आते हैं, तो उसके आधार पर क्यों नहीं शनिवार को ऑडियो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि शुक्रवार की खबरें रह जाती हैं। सपना जी और आपके माध्यम से मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि देखिए एक चीज आप सब अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें फ्रेंड्स, और वो ये कि ये जो डेली ऑडियो है यही सब कुछ नहीं है, बावजूद इसके कि इससे बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आपको वो टेक्निक मालूम है, वो समझ है, वो बोध है, वो गहराई है, तो उससे परे कहां कोई जाएगा, आगे भी ऐसे ही होंगे, बल्कि मैं तो समझता हूं कि आगे इससे भी ज्यादा बेहतर होंगे। और हमने जो क्लासेज में जिस तरीके से चीजें बताई हैं और जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, मेरे शुरू के अभी तीन बैच के स्टूडेंट हो गए हो चुके हैं और तीनों बैच के स्टूडेंट्स उससे मैच कर सकते हैं कि गांधी जी पर क्वेश्चंस पूछा गया है तो वो किस तरीके से बिल्कुल उससे मैच कर रहा है, 1935 के एक्ट से पूछा गया है तो वो कितना सटीक तरीके से उससे मैच कर रहा है, वो सब आप करेंगे और बाद में हम चलकर आगे चलकर के इन सब इश्यूज पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं बात कहना चाह रहा हूं सपना जी के मेल के जरिए वो केवल दोस्तों ये है कि ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस है, चाहे उसमें न्यूज की एनालिसिस हो रही हो, चाहे क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हों, रीडिंग मटेरियल और लिसनिंग मटेरियल तो आपको दिया ही जा रहा है, लेकिन इसका जो मकसद है वो मकसद है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, आपके अंदर क्षमता पैदा करना। तो अगर पांच दिन के डेली ऑडियो से, चार दिन के डेली ऑडियो से आपको न्यूज की एनालिसिस बताई जा रही है तो आपको मैं उस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में तो बता ही रहा हूं, लेकिन उससे भी अधिक उसके माध्यम से मैं आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप कर रहा हूं कि आप कैसे न्यूज छांटेंगे, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप देखेंगे, उसी न्यूज को फिर आप अखबारों के जरिए, चाहे वो एडिटोरियल फॉर्म में हो या आर्टिकल फॉर्म में हो, कैसे उसको अपडेट करेंगे, कैसे उसको मजबूत करेंगे, कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, बाद में अगर वही न्यूज आगे चलती है तो कैसे कंटेंट जुटाएंगे, कैसे उस न्यूज की डेप्थ में जाएंगे। इतनी सारी बातें आप डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से ही अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो इसका पर्पस आपको कोई सीधे सीधे बना बनाया भोजन उपलब्ध कराना नहीं है, वो तो है ही है, कोई आर्टिकल्स अगर आपको सीधे सीधे प्रोवाइड हो जाता है तो आप उसको पढ़ेंगे, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस तो एक तरीके से बने बनाया भोजन जैसा ही काफी कुछ होता है, लेकिन जो डेली ऑडियो गाइडेंस का फॉर्मेट है फ्रेंड्स वो एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग का है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैटरडे को आपको ऑडियो न्यूज पर बेस मिलता है या नहीं मिलता, या संडे को मिलता है या नहीं मिलता है। मित्रों मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आप सब इसकी कमी महसूस करते हैं, ये मेरे लिए सचमुच बहुत खुशी की बात है कि आप लोग को एक तलब सी होती है कि सैटरडे को भी हमें सुनने को मिले, संडे को भी सुनने को मिले, और सच पूछे तो मेरे लिए इससे बड़ी सफलता का प्रमाण और क्या हो सकता है। क्योंकि कोई किसी को प्यार करता है तो इसलिए नहीं करता कि वो केवल प्यार कर रहा है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि इसे प्यार किया जाना चाहिए। तो आप लोगों का जो मुझे प्यार मिलता है, जो मुझे सम्मान मिल रहा है, वही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और वही ताकत अभी लगातार 21 महीनों से मुझसे रोजाना ऑडियो तैयार करवा रही है मित्रों। क्योंकि इस ऑडियो की जो सबसे बड़ी सीमा है और जो सबसे बड़ी चुनौती भी है, मैं समझता हूं कि शायद कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ताकत भी है, वो यही है कि वो मैं ही कर सकता हूं, अपनी जगह मैं किसी दूसरे को नहीं बिठा सकता। अगर मैं कभी क्लास नहीं ले पा रहा हूं तो मैं क्लास लेने के लिए दूसरे को भेज सकता हूं कि भाई आज आप, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्लास ले लीजिए, आज मैं दूसरे काम में बहुत बिजी हूं, आप आज क्लास ले लीजिए। लेकिन डेली ऑडियो में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि लिखित स्क्रिप्ट इसकी है ही नहीं। इसके बाद भी यदि ये हो रही है तो मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे ईमानदारी और विनम्रता के साथ मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आप सब मुझसे करा रहे हैं, और जब तक आप सब मेरे साथ रहेंगे तब तक ये भी होता रहेगा। जिस दिन आप साथ छोड़ देंगे स्वाभाविक तौर पर ये अपने आप बंद हो जाएगा, फिर मैं किसके लिए करूंगा, और करूंगा भी तो फिर मुझसे कराएगा कौन। तो मित्रों ये मैं आप लोगों की ताकत ही समझता हूं जो मेरी ताकत बनी हुई है। तो यहां जो ऑडियो के जो सैटरडे और संडे की बात है उसे मैं इस माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। फ्रेंड्स वक्त बहुत हो गया है, आज लाइफ मैनेजमेंट के लिए वक्त नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हमने जो थोड़ी सी और बात की, जो विश्वास की बात की, जो काम करने और कराने की बात की, जो अपनी कैपेसिटी की बिल्डिंग की बात की, उसे ही आप लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा मान लें। लेकिन मित्रों मैं अभी से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अभी संडे को मैं बाजीराव मस्तानी फिल्म देख करके आया। आप जानते ही हैं कि फिल्में देखने का कुछ अतिरिक्त सा शौक भी है, और मुझे अपनी जिंदगी को समझने जानने के बारे में बहुत कुछ सीखने को वहां मिलता है। तो मेरे लिए तो वो ढाई तीन घंटे की एक बड़ी खूबसूरत क्लास होती है, क्लास नॉलेज विथ एंटरटेनमेंट। और एक दो स्टूडेंट ने, जो शायद मैं समझता हूं कि मेरे पुराने श्रोता रहे, इसलिए उन्होंने सजेस्ट भी किया कि सर आप बाजीराव मस्तानी के ऊपर को बेस बना करके हमें कुछ बताइए। नो डाउट दोस्तों कि बहुत गजब की फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, और इसके डायमेंशंस इतने ज्यादा हैं कि मैं पता नहीं कितने दिनों तक सिर्फ बाजीराव मस्तानी फिल्म को आधार बना करके ही लाइफ मैनेजमेंट की चर्चा कर सकता हूं, और कुछ समय तक तो मैं करूंगा भी। मुझे मालूम है कि आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मेरे प्रिय श्रोता हैं जिन्होंने बाजीराव मस्तानी फिल्म नहीं देखी हो। मैं छोटी जगहों की बात नहीं करता क्योंकि ये जो ऑडियो है वो छोटे छोटे जगहों पर भी सुना जाता है, वहां पता नहीं कितनी सुविधा है कि वो ये इसे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा। आज का आपके पास वक्त है, आगे भी वक्त है, मैं कल से बाजीराव मस्तानी फिल्म को ही ध्यान में रख करके लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बड़े कुछ बहुत ही खूबसूरत चर्चाएं करने जा रहा हूं। तो यदि आप फिल्म देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको मेरी इन बातों को समझने में न केवल मजा ही आएगा बल्कि आपकी पकड़ भी और अधिक मजबूत होगी। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, वो आकाशवाणी के समाचार का एरिया। सच पूछे तो लगभग 5-6 न्यूज ऐसी हैं जो हमारे सिविल सर्विस के हिस्से बन सकते हैं। पहली बात, मैं पहले आपको नाम गिना दूं क्योंकि जिस तरह से वक्त बीतता जा रहा है उसको आधार बनाकर के मुझे कुछ इसी तरीके से आज की बात करनी होगी। एक है दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आपको मालूम है कि जो नाबालिगों को सजा देने से संबंधित जो कानून है वो न्यूज है। दूसरी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कल्याण के लिए एक एक्ट पारित किया गया है, वो है। तीसरा है कि जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में करप्शन को लेकर के उस समय उसमें अपने अरुण जेटली जी जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी खबर थी। तीसरी एक बहुत बड़ी खबर है जो इंपॉर्टेंट खबर है कि नेपाल की सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की घोषणा की है कि वो मधेशियों की मांग के अनुसार चेंज करेंगे। और जो एक अगली जो खबर थी, जो छोटी सी सही लेकिन इंपॉर्टेंट खबर थी कि क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो अपने 11 साल के बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। ये 5 खबरें हैं, राइट। तो इन 5 खबरों में जो जिस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको लेकर के मैं अब आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरी समझ से ये बात अब बताने की जरूरत नहीं है कि जब मैं न्यूज की बात करता हूं तो बहुत क्लियरली है, न्यूज के एनालिसिस की बात करता हूं तो मेरी वो जो एनालिसिस होती है उस एनालिसिस का आधार विद्वत्ता नहीं है। उस एनालिसिस का जो आधार होता है वो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने टारगेट, मेरा जो ग्रुप है मैं उनके बारे में जानता हूं, उनकी जरूरतों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूं और मेरा वो जो टारगेट ग्रुप होता है वो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला ग्रुप होता है। हां, ये बात अलग है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला ग्रुप का स्तर इतना ऊपर होता है कि उसमें फिर दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला ग्रुप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि हाथी के पांव में सबका पांव समा जाता है, तो मैं उसी बेस पर अपनी बातें रखने की कोशिश करता हूं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हो तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज बिल्कुल चीजें परफेक्ट तरीके से ही हों ये मेरी कोशिश रहती है। दोस्तों, ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप देख रहे हैं कि खासकर निर्भया कांड के बाद पूरा देश आंदोलित हुआ था और मैं समझता हूं कि अन्ना हजारे जी ने जो लोकपाल विधेयक के बारे में जो अनशन किया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया था, हालांकि इसके बारे में डिबेट है कि वो कितना बड़ा आंदोलन था, लेकिन एक बार पूरा देश इकट्ठा तो हुआ था। इसके बाद निर्भया कांड ने पूरे देश को हिलाकर रखा था। उसमें जो एक बलात्कारी था उसकी उम्र कम थी, आपको मालूम है, और जो जुवेनाइल है, जो नाबालिग की जो हमारे यहां डेफिनेशन दी गई है वो 18 साल से ऊपर की है, यानी कि उससे पहले वो नाबालिग है, जिसको आप किशोर अवस्था में कह सकते हैं। तो अगर वो कोई भी अपराध करता है तो ये माना जाता है कि चूंकि ये नाबालिग है, इसकी समझ नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो उस असमझ के कारण, उस बेवकूफी के कारण ये अपराध कर बैठा है, और चूंकि अभी इसकी उम्र बहुत कम है इसीलिए इसकी सजा की गंभीरता को थोड़ा सा कम करके आंका जाना चाहिए और एक थोड़ी सी सजा देकर के उसे सुधार गृह में भेजना चाहिए ताकि वो सुधर सके। और नो डाउट कि मानवीय दृष्टि से ये गलत भी नहीं है, बहुत से देशों में इस तरीके से कानून बनाए गए हैं क्योंकि अंततः है तो वो देश का नागरिक ही, किसी वजह से वो अपराध कर बैठा, इन भावनाओं के चलते ये बात न्याय में ये व्यवस्था की गई है। लेकिन इस मामले में हुआ यह है कि ये अपराध इतना जघन्य था कि लोग, मतलब एक दुष्कर्म जैसा अगर कोई किशोर काम कर सकता है तो वो अपरिपक्वता नहीं है, वो एक उसके दिमाग की का जो फितूर है उसे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो एक डिबेट सी चली और उसमें यह कहा गया कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसमें जो एज बनाई गई है जो 18 साल, इसको कम किया जाना चाहिए। बात हुई 15 साल 16 साल 14 साल, तो इसके ऊपर फिर एक एक्ट लाया गया और वो एक्ट लोकसभा ने पारित भी कर दिया, जिसमें सजा जो उम्र घटा करके 16 साल कर दी गई, लेकिन वो संगीन अपराधों के मामलों में है। अब ये एक्ट लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अभी ये एक्ट पारित नहीं हुआ, 6-7 महीने से राज्यसभा में ये पड़ा हुआ है। लोगों का यह मानना कि अगर ये एक्ट पारित हो जाता तो अभी अभी रविवार को ये नाबालिग छूट गया है। आपको ये सारी घटनाएं बिल्कुल अच्छे से मालूम ही है। सुप्रीम कोर्ट का अलग से भी गए, उनके निवास पर गए न्यायमूर्ति के, और फिर सोमवार को इस पर फैसला भी आना था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे फैसला किया कि चूंकि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम उसकी रिहाई को रोक सकें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमा है मित्रों, वो सीमा यही है कि वो कानून के अनुसार ही अपने सारे निर्णय लेता है। तो यहां अगर आप एक चीज देखेंगे, क्योंकि हम न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये एक्शन है या ये जो टिप्पणी है, वो आपको इस बात को सोचने के लिए बाध्य करता है या दिशा देता है कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे विधायिका या प्रशासनिक अधिकारों को अपने हाथ से लेने से मना कर दिया। हम कानून कैसे बनाएं? अदरवाइज वो कह सकता था कि ठीक है, हम इसको अंदर करते हैं, इस रिहा नहीं होगा, लेकिन वो कानून के परे जाता। ये अधिकार विधायिका का है, तो उसने सीधे सीधे विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और प्रशासनिक कार्यों में से भी बिल्कुल इनकार कर दिया। यानी कि उसने बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो नीति है या जो आत्मा है, उसे जो कहते हैं इंटैक्ट रखा, लेकिन जो हमारे लोगों की जो भावनाएं हैं और सच पूछे कि जो जरूरत भी है वो एक डिफरेंट है। तो इसके लिए हमारी विधायिका है, और विधायिका ने जो लोअर हाउस है लोकसभा ने इस पर कदम उठाया भी। अनफॉर्चुनेटली जो एक गतिरोध चल रहा है संसद का, जिस पर हम लोग काफी बात भी कर चुके हैं, राज्यसभा ने उस पर कदम नहीं उठाया, और जिसके कारण आज पूरे देश में एक तरह से भावनात्मक आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। और नतीजा यह हुआ, देखिए, कि जो डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, कि उस आक्रोश को समझते हुए फिर सरकार ने यह फैसला किया, सभी दलों के नेताओं ने मिलकर के फैसला किया कि नहीं, हम राज्यसभा में इस पर बहस होगी, और आज राज्यसभा में इस पर बहस होगी और शायद राज्यसभा इसे पारित भी कर दे। मित्रों, ये जनशक्ति है। ठीक है, कभी एक गैप आता है, चीजें किसी वजह से गलत होती हैं, हम उसको सही और गलत नहीं ठहरा सकते, वो हमारे विश्लेषण का एक अलग हिस्सा है। लेकिन जो जनता की ताकत है कि उस समय जनता इकट्ठी हुई, डिमांड किया, जुवेनाइल एक्ट में चेंज करने की बात आई, और अभी जब जनता का फिर से आक्रोश उमड़ा, या उसे कह लीजिए कि एक डिमांड जनरेट हुई, तो फिर अब जुवेनाइल एक्ट, इसके बावजूद कि दूसरे एक्ट पारित नहीं हो रहे हैं, राज्यसभा ने उसको उस पर विचार करने का फैसला किया। यह लोकतंत्र की ताकत है। और दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि किस तरह से कि न्यायपालिका ने विधायिका के कार्यों में सीधे सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मित्रों, ये इसका एक पक्ष है सिविल सर्विस में। दूसरा इसका जो पक्ष है, और मैं समझता हूं कि किसी भी मायने में कमजोर पक्ष नहीं है, वो ये है कि अब का जो समाज है, पिछले 10-15 सालों से जो हमारा समाज बन रहा है, इस समाज में अब आपको चीजों की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। जैसे शुरू में हमारे यहां मतदान की जो उम्र थी, जब हमारा संविधान बना था, तो न्यूनतम आयु 21 साल थी। राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने उसे घटा करके 18 साल किया। मतलब उन्हें लगा कि शायद अब 18 साल का हमारा जो युवक है उतना ही परिपक्व हो जाता है जितना कि 21 साल का युवक। तो अगर 18 साल का युवक वयस्क मतदान के लिए हो गया, मतलब 3 साल उसकी वहां उम्र घट गई, तो फिर हमें सोचा जाना चाहिए कि भाई क्या नाबालिग वाली भी जो एज है वो कहीं कम नहीं हो रही है, उसे भी कम करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। फिर आप देखें कि हमारे यहां एज के बारे में फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज पैरामीटर्स बनाए हैं। जैसे कारखानों में खतरनाक काम से कितने उम्र तक के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, 14 साल के, वहां हमने 14 साल रखा हुआ है। ड्रिंक के अधिकार कब तक नहीं होंगे, वहां एज कुछ अलग है। तो इस तरह से एक डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में हमारी लाइफ के जो अलग अलग भाग हैं, वहां अलग अलग उम्र की सीमाएं रखी गई हैं। और फिर इस बीच में मीडिया के एक्सपेंशन ने, एजुकेशन के प्रभाव ने, आवागमन के साधनों ने, शहरीकरण की स्थितियों ने, शहरीकरण में उभरते हुए जो सामाजिक संरचना हमारी बन रही है, इसने लोगों को अधिक मेच्योर किया है। सोशल मीडिया ने, इसने जो नाबालिग की जो उम्र है उसको वाकई में घटा दिया है। अब आपको 18-15 साल का बच्चा, उस तरह का मासूम बच्चा नहीं मिलेगा जो हम लोग थे, और यहां कह लीजिए कि हमारे साहित्य में जिनका उल्लेख मिलता है। सच में हम लोग भी थे, हम लोग को 15-18 साल की उम्र तक तो कुछ मालूम ही नहीं होता कि दुनियादारी क्या होती है। आज के बच्चों को 60-70 साल के बूढ़े को नहीं मालूम कि दुनियादारी क्या होती है, लेकिन आप उससे पूछ करके देखें तो वो सारी चीजें बता देता है। तो मित्रों, इसके माध्यम से जो एक दूसरा सवाल जो खड़ा होता है सिविल सर्विस के लिहाज से, वो ये है कि किस तरह से बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने अब हमारे मानसिक संरचना को बदलना शुरू कर दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अब अपनी न्यायिक व्यवस्था को भी देखना परखना होगा और फिर उसी अनुसार उसमें संशोधन भी करने पड़ेंगे। आपने देखा है दोस्तों कि इस अभी ही रेप केस को लेकर के अब कितनी जबरदस्त सजाएं दी जाने लगी हैं, अब उसमें कोई भी नरमी नहीं बरती जाती है, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। और कल ही आपने देखा, आज कल के न्यूज में भी था कि किस तरह से जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसने 7 लोगों को जो गैंग रेप में जो शामिल थे उन्होंने मृत्युदंड दिया है। तो ये एक सामाजिक जो प्रभाव होता है लोकतंत्र पर, उसका भी एक प्रमाण है। तो मित्रों, अब वक्त हो चुका है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो वेलफेयर एक्ट पारित हुआ है, इसमें ढेर सारे बहुत अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं, अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा, आर्टिकल्स भी मिलेंगे, तो प्लीज उन प्रोविजंस को आप बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि सिविल सर्विस के लिहाज से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए हैं। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का जहां तक मामला है वो राजनीतिक ज्यादा है, देखते हैं कि अब वो क्या रूप लेता है, लेकिन सिविल सर्विस के लिहाज से वो नहीं, मतलब राजनीतिक मामला क्या है ज्यादा है, कहने का मतलब है कि एक राजनीतिक एक विवाद का आधार बन गया है। नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन में जो मधेशियों ने जो अपनी डिमांड रखी, आप देख रहे हैं कि नेपाल में किस तरह से एक बहुत अव्यवस्था की स्थिति चल रही है, और उसमें भारत और नेपाल के संबंध भी थोड़े से खटास में पड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मधेशिया अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे थे और उनका यह कहना था कि हमारे यहां जो चुनाव के क्षेत्र हैं उनका सीमांकन किया जाए, ये उनकी दो मांगे थी। तो अब उन्होंने कहा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाएंगे, और इस पर हम लोग पहले काफी बातें कर चुके थे, तो इसके बारे में मैं अब विशेष चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। मित्रों, आज बहुत से प्रेस क्लिपिंग्स हैं, और प्लीज आप ये सब प्रेस क्लिपिंग्स देख लेंगे, वक्त न होने की वजह से उनकी चर्चा नहीं हो पा रही है, और उसमें कुछ ऐसा विशेष है भी नहीं, खासकर इसमें अभी नैरोबी में जो सम्मेलन हुआ है, खासकर दोहा कॉन्फ्रेंस को आगे जो बढ़ाया गया है, खास कृषि व्यवस्था को आधार बना करके, उस टॉपिक पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर, बहुत से ईमेल हैं। एक दुखद मेल है अविचल कुमार का, जो सीतामढ़ी से हैं, जिन्होंने अभी के बैच में एडमिशन भी अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है कि अचानक हार्ट अटैक से उनकी मां नहीं रही, तो अविचल इसके लिए हम सभी बहुत, सच में पूछो तो मन से बहुत दुखी हैं, विचलित भी हैं, आपके दुख को हम लोग सभी समझ सकते हैं। ऐसे समय में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत आत्मा की शांति को प्रदान करे, आत्मा को शांति प्रदान करे, और आप सभी को, परिवारजनों को, इस दुख को सहने की शक्ति दे, हिम्मत से काम लें। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में कहीं कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो अरब खरबपति हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी शक्तिशाली, कुछ भी क्यों ना हो, आप इसको एक नियति मान करके अब अपने मन को मजबूत बनाएं। समय चलता ही रहता है, उसे कौन रोकता है, हिम्मत रखें। मित्रों, एक अच्छा सा मेल है विक्रम सिंह सोढ़ा का, जोधपुर से। ये हमारे स्टूडेंट रहे, और ये यहाँ आप लोगों को मालूम है कि जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास में अटेंड करने आते हैं, तो एकेडमी की जो छपी हुई बेंतन बुक्स की, जो मेरी किताबें सभी बेंतन बुक्स से छपी हैं, यहाँ जो किताबें छपी होती हैं वो हम 50% रिबेट पर उन्हें उपलब्ध कराते हैं। इसे मैं एक तरह से एकेडमी के द्वारा दिया गया गिफ्ट जैसा मानता हूँ। तो उसमें किताबें में वो खरीद करके ले गए थे कुंवारों के नाम खुला खत, तो इन्होंने एक अच्छी बात लिखी है जिसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये किताब इन्होंने अपने परिवार वालों को पढ़ करके सुनाई, और परिवार वालों को ये किताब बहुत पसंद आई। उसमें मैंने दहेज के खिलाफ अपनी बात रखी है, तो उनके परिवार ने इस बात का फैसला किया कि वो दहेज नहीं लेंगे। तो विक्रम, इसके लिए तुमको बहुत बहुत बधाई कि तुमने एक काम किया, क्योंकि अगर तुम ले गए थे पढ़ करके नहीं सुनाते तो ये निर्णय भी नहीं होता। और इससे भी अधिक, सच पूछो, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का मेरी ओर से अभिनंदन, उनको प्रणाम कि उन्होंने इस तरह की घोषणा की। मित्रों, ये भले ही एक व्यक्ति के द्वारा उठाया गया कदम हो, लेकिन याद रखिए कि बड़ी यात्राएं भी की शुरुआत होती तो एक ही कदम से है। इसके बाद एक उज्जवल सिंह का मेरे पास मेल है, जो अररिया बिहार से हैं और हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि यहां की क्लासेस से उनको बहुत मदद मिली, और उसको आधार बना करके उनके अभी दो लेख प्रभात खबर में छपे हैं। इसके लिए उज्जवल बहुत बहुत तुम्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। और मुझे बहुत खुशी होगी जब बाकी स्टूडेंट भी इस तरीके से अपनी क्षमताओं का प्रयोग सार्वजनिक रूप से करना शुरू करेंगे। तो मित्रों, बहुत से मेल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी में से कुछ दोस्तों के नाम हैं जिनकी संख्या आज काफी है। वह है ऋषिराज सिंह जाडेजा गांधीनगर से, गुजरात से, गौरव धीमान नई दिल्ली से, मिथुन कन्नौजिया, नीतीश कुमार बेगूसराय से, मयंक वर्मा लखनऊ से, विशाल केसरी इलाहाबाद से, हंस राज तेली खेरखटा राजस्थान से, राम सोनी, सचिन कुमार सिंह दुर्ग छत्तीसगढ़ से, रचना बिंदल आगरा से, संतोष कुटे सोनगिरी महाराष्ट्र से, देवीलाल बाड़मेर से, युवराज ओपी जाट अजमेर राजस्थान से, उत्कर्ष दीप, अपर्णा, विपुल कुमार गुप्ता वाराणसी से, जसविंदर चौहान लखनऊ से, प्रभात कुमार मेरठ से, आकाश सिंधु, दीपक कुमार वाराणसी से, अजीत यादव दिल्ली से, आनंद शर्मा इलाहाबाद से, सत्येंद्र सिंह, सचिन गुर्जर ग्वालियर से और कपिल चारण जोधपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, मैं यहां एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि जो आकाश सिंधु हैं, इन्होंने भी अपने मेल में डिटेल्स में ये लिख करके भेजा है कि जो डेली ऑडियो गाइडेंस है, क्लिपिंग्स हैं और जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से कौन कौन से अंश सीधे सीधे अभी के मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने मेल में फ्रेंड्स, आज जो बेस्ट मेल की जो मैं घोषणा करने जा रहा हूं, वो ओपी जाट जो अजमेर राजस्थान से हैं, उनके मेल को मैं आज सर्वोत्तम लिखा गया मेल मानता हूं। इसके लिए ओपी जाट को बहुत बहुत हम सब की तरफ से बधाई। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।